ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। गैस की कमी की समस्या का तत्काल समाधान करने की संसदीय समिति ने सांसदों की मांग। गैस आपूर्ति प्रभावित जिलों में वितरण व्यवस्था को गैर प्रभावी बनाने का और प्रभावी बनाने का निर्णय। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सुदूर पश्चिम प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रपा के सांसदों के साथ की चर्चा। कंचनपुर के महेंद्रनगर स्थित मझगांव विमानस्थल को फिर से संचालन में लाने की तैयारी। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सुदूर पश्चिम प्रदेश से प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा ने सांसदों ने सरकार के अच्छे कार्यों को संसद में प्रभावी ढंग से उठाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आज प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान सांसदों ने सुशासन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से वे संसद के माध्यम से इन कार्यों की जानकारी देंगे। बैठक में सांसदों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दे भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखे। प्रतिनिधि सभा में भूमिहीन सुकुम्बासी और अव्यवस्थित बसोवासियों के संरक्षण एवं पुनर्वास से जुड़े अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता भीष्मराज आङदेम्बे ने कहा कि वास्तविक भूमिहीन और सुकुम्बासी नागरिकों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इन प्रस्ताव का समर्थन नेकपा एमाले के मुख्य सचेतक एन बहादुर मगर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य सचेतक युवराज दुलाल तथा श्रम संस्कृति पार्टी के मुख्य सचेतक आरएन राय ने किया। चर्चा में सांसदों ने आरोप लगाया कि पर्याप्त तैयारी के बिना सुकुम्बासी बस्तियों पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने लोगों के जीवन और भविष्य को असुरक्षित बना दिया है। उन्होंने वास्तविक सुकुम्बासियों की पहचान, सुरक्षित आवास, मुआवजा और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र लाल पुर्जा वितरण की मांग की। सरकार से प्रत्येक 15 दिन में संसदीय समिति को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का तथा समस्या का समाधान होने तक हर माह सदन को जानकारी देने की मांग की गई। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय एवं संसदीय मामलों की मंत्री सोभिता गौतम ने आदिवासी जनजाति आयोग की आर्थिक वर्ष 2081-82 की छठी वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश की। सांसदों ने सुनसरी तथा तराई मधेश में हाल में हुई धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से दीर्घकालीन शांति स्थापना की रणनीति अपनाने तथा नागरिकों के मन में व्याप्त भय दूर करने के लिए विशेष पहल करने की मांग की है। आज की प्रतिनिधि सभा बैठक में विपक्षी सांसदों ने धनुषा में गृह मंत्री सुदन गुरुंग द्वारा किए गए 13 सूत्रीय समझौते पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि धर्म राज्य के संवैधानिक स्वरूप, नागरिकता और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर केवल एक पक्ष के साथ समझौता कर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। सांसदों ने तराई मधेश की हिंसा में 4 नागरिकों की मृत्यु के लिए सरकार की विफलता को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेने तथा घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक विश्वसनीय आयोग गठित करने की मांग की। बैठक में सांसदों ने यह मुद्दा भी उठाया कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी ने सुस्ता क्षेत्र में नेपाली सीमा के भीतर प्रवेश कर नेपाली नागरिकों को धमकाया तथा भौतिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इस मामले में सरकार से तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की। प्रतिनिधि सभा की उद्योग, वाणिज्य, श्रम एवं उपभोक्ता हित समिति ने देशभर विशेषकर काठमांडू उपत्यका में एलपीजी गैस की कमी पर चिंता जताते हुए सरकार से तत्काल समस्या का समाधान करने की मांग की है। समिति के सभापति रहवर अंसारी ने घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए अलग अलग गैस वितरण व्यवस्था लागू करने तथा गैस सिलेंडरों का वैज्ञानिक आधार पर मैपिंग करने की आवश्यकता बताई। उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी ने कहा कि मंत्रालय गैस आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। वहीं मंत्रालय के सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाड़ी ने विश्वास जताया कि कुछ ही दिनों में गैस की कमी दूर हो जाएगी। प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के पूर्व व्यवस्था बहाल करने संबंधी विधेयक 2083 को बहुमत से पारित कर दिया। समिति ने विपक्ष के उस संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय के बजाय गृह मंत्रालय के अधीन रखने की मांग की गई थी। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम ने कहा कि विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन रखने से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रभावी संकलन संभव होगा। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि विदेश मंत्रालय देश केंद्रित रणनीतिक कार्य योजना तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। आज विदेश मंत्रालय में आयोजित मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति MDSC की बैठक में उन्होंने बताया कि इस कार्य योजना के निर्माण के लिए मंत्रालय के विभिन्न महाशाखाएं सक्रिय रूप से काम कर रही है। विदेश मंत्री खनाल ने कहा द्विपक्षीय रणनीति को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि NTC को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि सरकार आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। आज परराष्ट्र मंत्रालय में आर्थिक कूटनीतिक महाशाखा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता और व्यापार महत्वपूर्ण आधार है। कुछ दिन पहले हुई झड़प और तनाव के कारण अत्यंत संवेदनशील बने सुनसरी जिले की भुकराहा नरसिंह गांव पालिका में आज सामाजिक सद्भाव बनाए रखें के नारे के साथ सर्वदलीय शांति एवं सद्भाव रैली निकाली गई। हालिया घटनाओं के बाद स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की थी। रैली का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास, एकता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव को और मजबूत करने का संदेश देना था। कंचनपुर के महेंद्रनगर स्थित मझगांव विमानस्थल को दोबारा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। अब तक विमानस्थल के पुनर्निर्माण का लगभग 77% कार्य पूरा हो चुका है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़कराज पौड़ेल ने कुछ दिन पहले निर्माणाधीन विमानस्थल का निरीक्षण कर शेष पूर्वाधार का काम समय पर पूरा कर इसे जल्द संचालन में लाने की प्रतिबद्धता जताई। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने दांग की गढ़वा गांव पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहीर सहित 5 लोगों के खिलाफ राजस्व की हानि पहुंचाकर भ्रष्टाचार करने के आरोप में आज काठमांडू स्थित विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आयोग ने सहजराम अहीर समेत 5 व्यक्तियों और शगुन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्राली बुटवल के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। देश में बाढ़, भूस्खलन और अन्य मानसूनी आपदाओं के कारण 5 प्रमुख सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। सड़क विभाग के प्रवक्ता शुभराज न्योपाने ने बताया कि ललितपुर के कांति लोकपथ, काठमांडू के सीता पाइला धार के सड़क खंड, भोजपुर स्थित मध्य पहाड़ी लोकमार्ग और इलाम के मेची राजमार्ग सहित 5 सड़कें लगातार बारिश के कारण बंद है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वायत जिले के कवाल क्षेत्र में एक पुलिस थाने के बाहर हुए आत्मघाती बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इस हमले में 34 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिनमें कई की हालात गंभीर बताई जा रही है। यह विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस थाने के निकट बड़ी संख्या में लोग आतंकवाद के विरोध में आयोजित एक शांति रैली में शामिल थे। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मृतकों में 7 पुलिसकर्मी, 10 नागरिक और हमलावर शामिल है। घायलों को स्वायत्त के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा बलों ने हमले में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गैस की कमी की समस्या का तत्काल समाधान करने की संसदीय समिति में सांसदों की मांग। गैस आपूर्ति प्रभावित जिलों में वितरण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का निर्णय। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सुदूर पश्चिम प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रपा के सांसदों के साथ की चर्चा। कंचनपुर के महेंद्रनगर स्थित मझगांव विमानस्थल को फिर से संचालन में लाने की तैयारी और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।